आरव ने आयु को डॉक्टर सिंघानिया के सेमिनार को अटेंड करने से काफ़ी कोशिश की थी और उसकी कोशिश से काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी। आयु डॉक्टर सिंघानिया का सेमिनार अटेंड नहीं कर पाई थी और इस वक्त हॉस्पिटल के पार्क में बैठी हुई थी। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जिसे आरव ने उस पर नज़र रखने के लिए भेजा था। अचानक डॉक्टर सिंघानिया कॉल पर बात करते हुए उस तरफ आ रहे थे, तभी आयु जल्दी से उनके पास गई और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया। आयु ने जब डॉक्टर सिंघानिया से हैंडशेक किया तो उसके सिर में तेज दर्द उठा और वो लड़खड़ाकर गिरने लगी थी कि डॉक्टर सिंघानिया ने उसे अपनी बाहों में थाम दिया। अचानक डॉक्टर सिंघानिया के मुंह से निकला, आप ठीक तो है ना मॉम, उसने काफी धीरे से कहा था तो आयु को सुनाई नहीं दिया। आयु खुद को संभालने लगी। अचानक उसकी नज़र डॉक्टर सिंघानिया की आंखों की तरफ गई जो बिल्कुल आरव की आंखों की तरह ओशन ब्लू कलर की थीं। सिर्फ आंखों का कलर ही नहीं, उसकी आंखें और फोरहेड बिल्कुल आरव की तरह लग रहा था। आयु एक पल के लिए उन आंखों में खो गई तो वही वो भी आयु की तरफ खोई हुई नज़रों से देख रहा था। अचानक आयु और डॉक्टर सिंघानिया का एक साथ ध्यान टूटा क्योंकि आयु को किसी ने अपनी तरफ खींच लिया था, वो आरव था। आरव ने आयु को अपने पास खींचकर डॉक्टर सिंघानिया की तरफ घूरते हुए देखकर कहा, आगे से मेरी वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, तुम जो भी हो आई डोंट केयर, पर इसे इस तरह छूने का हक किसी को नहीं है। आरव का सारा ध्यान आयु की तरफ था इसलिए उसने डॉक्टर सिंघानिया की तरफ ठीक से देखा तक नहीं, जबकि वो उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। वो कोई और नहीं, आर्या था, आयु और आरव का बेटा। भले ही आरव ने उसे ना पहचाना हो लेकिन आर्या अपने मॉम डैड को कैसे भूल सकता था। उन दोनों को देखकर आर्या की आंखें वहीं पर जम गईं और वो मन ही मन बोला, मॉम डैड कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये दोनों साथ में हैं और जिंदा, गॉड ये कोई सपना ना हो, और अगर ये सपना हो तो पूरी जिंदगी मैं ये सपना देखने के लिए तैयार हूँ। आरव के इस तरह डॉक्टर सिंघानिया यानी आर्या के साथ बदतमीजी से बात करने पर आयु ने बात को संभालते हुए कहा, प्लीज डॉक्टर सिंघानिया आप प्लीज इसकी बात को माइंड मत कीजिएगा, मैं तो जानती तक नहीं ये कौन है। इतना कहकर आयु ने आरव की तरफ देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। आरव ने आयु की तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, रियली मिसेस खुराना तुम मुझे नहीं पहचानती हो, किसी और को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने हस्बैंड को भूल रही हो। ये मेरा हस्बैंड नहीं है, ये ऐसे ही फालतू बातें कर रहा है, ये पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, शादी भी इसने मुझसे जबरदस्ती की थी, अजीब सी बातें करता है, कहता है मैं इसके पिछले जन्म की वाइफ हूँ और ना जाने क्या क्या, आयु ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। वहीं उन दोनों को इस तरह लड़ता हुआ देखकर आर्या के चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी, वो मन ही मन बोला, कितने क्यूट लग रहे हैं फाइट करते हुए। एक मिनट, मॉम ने अभी अभी कहा कि डैड उन्हें अपने पिछले जन्म की वाइफ मानते हैं, तो क्या उन्हें सब पता है? हाँ यही मेरे मॉम डैड हैं। आर्या को चुप देखकर आयु ने कहा, आप तो इतने बड़े सर्जन हैं, इसे समझाते क्यों नहीं कि रीबर्थ जैसी चीज कोई नहीं होती है। आयु इससे पहले कि पूरा सच आर्या के सामने बताती, आरव जल्दी से उसे डांटते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई हैं जो कि मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता दोगी, तुम घर चलो फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। आरव आयु का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा, तभी आर्या ने आयु का हाथ पकड़कर उसे वहीं पर रोक लिया। उसकी इस हरकत पर आरव तिरछी निगाहों से घूरते हुए उसे देख रहा था। उनमें से कोई कुछ कहता उससे पहले एक लड़की दौड़कर उस तरफ आई, उसने आर्या से कहा, डॉक्टर आर्या आपको इमरजेंसी के लिए निकलना है और आप यहाँ खड़े होकर इनसे बातें कर रहे हैं, जल्दी चलिए मामला काफी सीरियस है, तुम चलो मैं आता हूँ, आर्या ने उसे वहाँ से भेज दिया। वहीं उस लड़की के मुंह से आर्या शब्द सुनकर आरव के दिमाग में आर्या की यादें ताज़ा हो गईं। फिर उसकी नज़र आर्या की आंखों की तरफ गई जो बिल्कुल आरव की तरह थीं। आरव और आर्या एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जहाँ पहले आरव आर्या पर गुस्सा कर रहा था अब वो बिल्कुल शांत हो चुका था। कुछ देर के आई कॉन्टैक्ट के बाद आर्या ने आयु से कहा, आप चलेंगी मेरे साथ मुझे असिस्ट करने के लिए? क्या मैं चल सकती हूँ आपके साथ? आई मीन मैं जाना चाहती हूँ पर ये मुझे जाने नहीं देगा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करना भी सही नहीं लग रहा है, आयु ने हिचकिचाते हुए कहा। फिर उसने प्लीडिंग आईज से आरव की तरफ देखकर कहा, प्लीज जाने दो। आरव ने आयु से कोई बहस नहीं की और उसे जाने के लिए इजाजत दे दी थी। आयु को भी इस पर हैरानी हो रही थी तो वहीं आर्या के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। आरव के हाँ कहते ही आर्या ने आयु से कहा, आप गाड़ी की तरफ चलिए मैं आता हूँ। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां से चली गई। उसके जाते ही आर्या में धीरे से मुस्कुराकर आरव की तरफ देखकर कहा, बाद में मिलते हैं और जरूर मिलेंगे डैड। आरव ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस आर्या के गले लग गया। उसने उसे काफी कसकर हक कर रखा था। एक पल के लिए आरव को यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले कई दिनों से जिस फैमिली को वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था अचानक उसका बेटा खुद उसके सामने आ जाएगा। अपनी मॉम का ध्यान रखना, उसे तुम पर क्रश है, आरव ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके हल्का मुस्कुराते हुए कहा। होना भी चाहिए, आखिर बेटा किसका हूँ, आर्या ने जवाब दिया और फिर वहां से चला गया। इतने सालों में पहली बार आर्या के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल की, वरना आरव और आयु के जाने के बाद तो बस वो जी रहा था। आर्या आयु को लेकर गाड़ी में निकल गया। तो वहीं आरव भी गाड़ी लेकर उनके पीछे जा रहा था। उसका दिल ही नहीं मान रहा था कि अब वो आर्या को अपने से एक पल के लिए भी दूर करे। अचानक ही आरव के दिमाग में कुछ यादें ताजा हो गईं, जब आयु आरव के साथ नहीं रहती थी और उसने आर्या को अकेले ही बड़ा किया था। आर्या उस वक्त लगभग 3.5 साल का था और आरव के साथ टेंट में डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा था। आर्या स्टेथोस्कोप लेकर आरव की तरफ देखकर मासूमियत से बोला, डैड मुझे न्यूरो सर्जन बनना है। आर्या, बेबी वो न्यूरो सर्जन नहीं, न्यूरो सर्जन होता है, आरव ने उसे करेक्ट करते हुए कहा। हाँ वही न्यूरो सर्जन, आर्या बोला, जिस पर आरव धीरे से मुस्कुरा दिया। पुरानी बातें याद आते ही आरव के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। अचानक उसके मुंह से निकला, तो तुम न्यूरो सर्जन बन ही गए। मुझे सब अच्छे से याद है कैसे बचपन में तुम मुझे जानबूझकर तंग करते थे और अपना हर छोटा काम मुझसे करवाते थे। इतने बड़े हो गए हो तुम और मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा भी नहीं। काश आज अरीशा जिंदा होती तो वो भी तुम्हारी तरह, आरव बोलते हुए रुक गया और उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया। आर्या और अरीशा ट्विंस थे, जिसमें अरीशा की आरव और आयु के साथ की मौत हो चुकी थी। आरव ने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और अपनी गाड़ी उस हॉस्पिटल के आगे रोक दी जहां आर्या और आयु गए थे। वहां किसी का एक्सीडेंट हुआ था और हालात काफी सीरियस थी। वो दोनों को हॉस्पिटल के अंदर गए, तब रात के लगभग 7:30 बज रहे थे, लेकिन बाहर निकले तब रात के 11 बज गए थे। आर्या कब से आरव से मिलने के लिए बेताब हो रहा था, क्योंकि आरव को सब कुछ याद था और आर्या को उसे ढेर सारी बातें करनी थी। सर्जरी के बाद बाहर आते ही आर्या अपनी गाड़ी में बैठने के बजाय आयु के साथ आरव की गाड़ी में आ गया था।
आर्या आरव के साथ फ्रंट सीट पर बैठा था जबकि आयु बैक सीट पर थी। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोली, फिर उसने हैरानी से कहा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? आरव, जब तुमने डॉक्टर सिंघानिया को देखा तो तुम बहुत गुस्सा थे और अचानक ही तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया। पुराने दोस्त हो क्या? पर डॉक्टर सिंघानिया तो तुमसे एज में थोड़े बड़े हैं। इसके सवाल फिर से शुरू हो गए, आरव ने आईज रोल करके कहा। आरव ने आयु की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो रस्ते भर उसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछकर परेशान करती रही, जबकि आर्या सीट पर लीन होकर कुछ देर के लिए आराम कर रहा था तो उसकी आंख लग गई थी। कुछ ही देर में वो तीनों आरव के ही एक होटल में पहुंच चुके थे। हालांकि आयु काफी हैरान हुई कि आरव उसे घर ले जाने के बजाय होटल क्यों लेकर आया है। आरव ने एज यूजुअल आयु के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और आर्या के साथ ऊपर एक लग्जूरियस स्वीट में पहुंचा। वहां आते ही आर्या ने आयु से कहा, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? हाँ, पर मुझे आपको टच करने पर अजीब सा फील हुआ, मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे सिर में दर्द होने लग गया और ऐसे लगा जैसे मैंने आपको पहले भी टच किया है। कुछ वैसा सा एहसास हुआ जैसा आरव को छूने पर होता है, आयु ने धीरे से कहा। आर्या ने आगे कुछ नहीं कहा और उसने डायरेक्ट आयु को गले लगा लिया था। इस वक्त उसे बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन आयु की हालत खराब हो रही थी। अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे फिर से कुछ दृश्य दिखाई देने लगे, जहां वो किसी बच्चे के गले लगी हुई थी। वो बच्चा कोई और नहीं, उसका खुद का बेटा आर्या था, और वो सब देखते ही आयु आर्या की बाहों में ही बेहोश हो गई थी।